जो लड़का आस्तिक को मारने आया था, आस्तिक उससे लड़ रहा था, लेकिन तभी उस लड़के ने मौके का फायदा उठाकर अरुणिमा की तरफ निशाना साध दिया। आस्तिक का दिल घबरा गया, क्योंकि अरुणिमा अपनी जगह पर पत्थर बनी हुई थी, उसके हाथ भी नहीं हिल रहे थे, वो बिल्कुल पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम गई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस लड़के ने अरुणिमा पर गोली चला दी। जैसे ही फायरिंग की आवाज़ हुई, आस्तिक का हाथ छूट गया। उसने उस लड़के को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो एक टेबल पर जाकर गिर गया। लेकिन उसी पल आस्तिक को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया वीरान हो गई है। अब उसकी दुनिया में ना तो कोई खुशी है और ना ही अब उसका इस दुनिया में कोई अपना है। अरुणिमा, सिर्फ अरुणिमा, ये सिर्फ एक लड़की नहीं, आस्तिक की पूरी दुनिया है। ना कोई एहसास, ना कोई वजूद, ना कोई समझौता, ना कोई शिकवा, ना किसी से कोई शिकायत। बस इस एक पल में आस्तिक को एहसास हो गया कि वो अरुणिमा के लिए क्या महसूस करता है। अरुणिमा को खोने का डर उसके दिल में हर सोच, हर विचार को एक तरफ कर देता है। और अब जो आस्तिक को महसूस हो रहा था वो ये था, मोहब्बत। हाँ, उसे अरुणिमा से मोहब्बत है, बे इंतहा मोहब्बत। कभी कभी हम किसी शख्स के साथ सारी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन फिर भी उसे मोहब्बत महसूस नहीं कर पाते। और कभी कभी एक पल ही काफी होता है ये समझने के लिए कि सामने वाला शख्स हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये वही पल था जब आस्तिक को एहसास हो गया कि अरुणिमा के साथ होना सिर्फ उसके मकसद को पूरा करने की वजह नहीं है, बल्कि अरुणिमा ही उस मकसद में साथ रहने की वजह है। अगर अरुणिमा साथ है तो आस्तिक सारी दुनिया से जीत सकता है, लेकिन अगर अरुणिमा ही साथ नहीं है तो उसकी दुनिया के कोई मायने नहीं, आस्तिक के खुद के कोई मायने नहीं, वो खुद भी सिर्फ आस्तिक बन के ही रह जाएगा। अरुणिमा को खोने का डर आस्तिक को एक पल के लिए ये तक भुला देता है कि वो किस मकसद से अरुणिमा को अपने पास रख रहा था। और इसी के साथ उसके दिल की गहराइयों से एक आवाज़ आती है, मोहब्बत है। हाँ, यही मोहब्बत है, उसे अरुणिमा से मोहब्बत है, वो भी बे इंतहा, इतनी कि वो अरुणिमा को कभी खोना नहीं चाहेगा। ये सब उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि अरुणिमा पर जो गोली चलाई गई थी वो उसे नहीं लगी, बल्कि उसके बाजू के बहुत करीब से गुजर गई थी, तो उसकी जान में जान आई। अरुणिमा के हाथ में जो ट्रे थी वो जमीन पर गिर गई और उसी के साथ सारा खाना जमीन पर फैल गया। अरुणिमा सुरक्षित थी, समझ लो आस्तिक की हर सांस मौजूद थी और उसका दिल धड़क रहा था। अरुणिमा को सुरक्षित देखकर आस्तिक बयां नहीं कर सकता था कि इस वक्त उसे कितनी खुशी मिल रही थी, शायद ऐसी खुशी जो उसे तब भी नहीं मिली थी जब उसे ये पता चला था कि वो अगला माफिया किंग बनने वाला है। पर खतरा अभी टला नहीं था, वो लड़का अपनी बंदूक उठाकर दोबारा हमला करने की फिराक में था। लेकिन तब तक आस्तिक ने पलटकर उसकी गर्दन दबा ली और उसकी कलाई मोड़कर उसके हाथ से बंदूक नीचे गिरा दी। उस लड़के ने भी बराबरी से मुकाबला किया, ये पहली बार था जब कोई आस्तिक पर भारी पड़ रहा था। उसने आस्तिक के पेट पर लात मारी और कोहनी पर कई वार किए, लेकिन आस्तिक के मजबूत शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। फिर ना जाने कहां से उस लड़के ने अपनी कमर के पीछे से खंजर निकाला। जैसे ही आस्तिक ने उसके हाथों में खंजर देखा वो सतर्क हो गया, उसने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। लेकिन वो लड़का भी किसी हाल में पीछे हटने वाला नहीं था, वो पूरी ताकत से आस्तिक पर वार करने की कोशिश कर रहा था। आस्तिक ने एक हाथ से उसे पकड़ा और दूसरे हाथ से, जो उसकी गर्दन पर था, खींचते हुए उसका नकाब हटाना शुरू किया। नकाब आधा हट चुका था और उसी वक्त आस्तिक की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, होंठों के ठीक ऊपर दाहिनी ओर एक गहरा निशान। आस्तिक एकदम चौंक गया, उसके दिमाग ने अचानक तेजी से काम करना शुरू कर दिया और वो उस दिन की ओर लौट गया जिस दिन उसकी शादी की सालगिरह थी और उसके पिता के घर में एक ग्रैंड पार्टी चल रही थी। इसी पार्टी में एक प्रोजेक्टर पर एक सीन चल रहा था जिसमें अरुणिमा किसी लड़के के साथ बहुत खराब हालत में दिख रही थी। उस लड़के के चेहरे पर नकाब था और अरुणिमा नशे में थी। एक मिनट के लिए ही सही, जब उस लड़के का नकाब आधा हटा था तो वही निशान, वही चेहरा आस्तिक ने उस दिन देखा था। आस्तिक पहचान गया, ये वही लड़का था जो उस दिन अरुणिमा के साथ था और जिसकी तस्वीर प्रोजेक्टर पर दिख रही थी। आस्तिक के अंदर का गुस्सा उबाल पर आ गया था, वो इसे ढूंढने के लिए महीनों से भटक रहा था। उसने जी जान से मेहनत की थी लेकिन ये लड़का ऐसे गायब हो गया था जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। आस्तिक की Z+ टीम भी उसे नहीं तलाश पाई थी, लेकिन आज ये लड़का खुद उसकी आंखों के सामने था। उसे देखकर आस्तिक के अंदर पागलपन सवार हो गया। अरुणिमा अब भी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं और वो बुरी तरह कांप रही थी। इतना डर तो उसे तब भी नहीं लगा था जब आस्तिक उसे टॉर्चर करता था, लेकिन आज जाने क्यों आस्तिक को खोने का डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आस्तिक ने उस लड़के के खंजर वाले हाथ को दीवार से सटा दिया और मजबूती से पकड़ लिया। दूसरे हाथ से उसकी गर्दन दबोचते हुए गुस्से में दांत पीसकर बोला, बताओ किसने भेजा है, कौन हो तुम, कौन है जो तुम्हारा इस्तेमाल करके मुझे बर्बाद करना चाहता है। तुम ही थे ना जो पार्टी वाली रात अरुणिमा के साथ कमरे में थे, लेकिन ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं लगती, मुझे उसका नाम चाहिए जिसने तुम्हें भेजा। बताओ किसने किया ये सब, किसके कहने पर तुमने मेरी बीवी के साथ नशे की हालत में वो सब किया, कौन है वो जो मुझसे अपनी दुश्मनी इस तरीके से निकाल रहा है। ये सारी बात अरुणिमा भी सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो आज तक उस दिन के बारे में कुछ नहीं बोल पाई थी जिस दिन उसकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और उसके चरित्र पर उंगली उठाई गई थी। उस लड़के का एक हाथ तो आस्तिक की गिरफ्त में था और उसकी गर्दन आस्तिक बुरी तरह से दबा रहा था, लेकिन दूसरे हाथ से वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसने अपना एक पैर उठाकर आस्तिक के पैरों के बीच वार किया। आस्तिक का शरीर एक पल के लिए ढीला पड़ गया। शेर को जब कमजोर समझ लिया जाए तो गीदड़ अपनी चाल चल ही देता है। उसने अपने खंजर वाले हाथ से सीधा वार किया और खंजर आस्तिक की बाई कमर में घुस गया। हालांकि आस्तिक ने वक्त रहते खुद को थोड़ा मोड़ लिया था, जिसे खंजर पेट के बजाय कमर की साइड में लगा, लेकिन दर्द तेज था, खून बहने लगा। आस्तिक दर्द से कराह उठा। उसे लड़के पर फिर से हमला करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसी पल एक गनशॉट की आवाज आई। वो लड़का वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसे सिर के बीचों बीच गोली लगी थी। आस्तिक ने दर्द से भरे चेहरे और हैरानी से जब नजर उठाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने अरुणिमा खड़ी थी। उसके हाथों में वही पिस्तौल थी जिसे वो लड़का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था।